jabihari Gopi Janna Ballabha Giri Madadhari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Ballabha Giri Varadhari Yashodhanandana Bhaja Janaranjana Yashodhanandana Bhaja Janaranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Ballabha Giri Varadhari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Ballabha Giri Varadhari Yashodhanandana Braja Janaranjana Yashodhanandana Braja Janaranjana Yamuna Tiravana Chari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Ballabha Giri Varadhari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिता जय गौरनिता गौरनिता जय गौरनिता जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद अखिल प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरये नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयं भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्टिके। ग्रंथाश्रमित भागवतम स्कंद तीन और अध्याय है सात और श्लोक संख्या है तीन। अध्याय का नाम है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। कृपया मेरे बात दोहराएं। क्रीडायां उद्यमोऽव्यस्य
क्रीडायामुद्यमोर्भ्यस्य कामः क्रीडिसान्यत कामचिक्रीडिसान्यत स्वतस्तृप्तस्य च कथम् निवृत्तस्य सदान्यत क्रीडायाम् उद्धर्मोर्भ्यस्य कामश्चिक्रीडिसान्यत स्वतस्तृप्तस्य च कथम् निवृत्तस्य सदान्यत सदान्यत क्रीडायामुद्यमोर्भ्यस्य कामचिक्रीडिसान्यत स्वतः तृप्तस्य च कथम् निवृत्तस्य सदान्यत क्रीडायामुद्यमोर्भ्यस्य कामश्चिक्रीडिसान्यत स्वतस्तृप्तस्य च कथम् निवृत्तस्य सदान्यत शब्दार्थ इस प्रकार है क्रीडायाम खेलने के मामले में उद्यम उत्साह अर्भस्य बालकों का कामः इच्छा चिक्रीडिसा खेलने के लिए इच्छा अन्यतः अन्य बालकों के साथ स्वतः तृप्तस्य जो आत्मतुष्ट है उसके लिए च भी कथम किस लिए निवृत्तस्य विरक्त सदा सदैव अन्यतः अन्यथा अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं किंतु भगवान में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं और सदा हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। तात्पर्य चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वय है अतः इसकी संभावना नहीं है कि उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता हो। वे अपनी शक्तियों द्वारा स्वांशों तथा विभिन्न विभक्तांशों के विविध रूपों में अपना विस्तार करते हैं जिस तरह अग्नि उष्मा तथा प्रकाश द्वारा अपना विस्तार करती है। क्योंकि स्वयं भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य अस्तित्व नहीं है अतः किसी भी वस्तु के साथ भगवान का साहचर्य अपनी ही साहचर्य को प्रकट करता है। भगवद्गीता 9वें अध्याय के 4थे नमः श्लोक में भगवान कहते हैं मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मस्थानी सर्वभूतानि न चाहं ते स्ववस्थितः। विराट स्थिति की पूर्ण अभिव्यक्ति भगवान के निर्गुण रूप का ही विस्तार है। सारी वस्तुएं केवल उन्हीं में स्थित हैं और फिर भी वे उनमें नहीं है। यह भगवान की आसक्ति तथा विरक्ति का ऐश्वर्य है। वह हर वस्तु के प्रति आसक्त है फिर सबों से विरक्त है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितन्तं सजीवम् नैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखानिताश्च। नमोम् विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतयातरो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभाव अखिलं श्रुतिसारमेकं अध्यात्मदीपमतिते तिरशतान्तमुन्दम् संसारिणा करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यास सुनुमुपयामि गुरुर्मुनीनां। भूर्तेर्महद्भिर्यैमा पुरो विभू निर्माय शेते यद्मूषु पुरुष भुङ्क्तेर्गुणान् षोडश षोडशात्मक सुलङ्कशिष्ट भगवान् वचांसि मे। गुर्वे गौरचन्दाय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो प्रातःकालीन भागवत सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो श्रीमद् भागवत गम का यह तृतीय स्कंध जिसका सातवां अध्याय अभी प्रारंभ हुआ है, इस अध्याय का नाम है विदुर के द्वारा अन्य प्रश्न। तो जैसा कि हमने अभी तक देखते आए हैं कि किस प्रकार से भगवान के सृष्टि का वर्णन पिछले अध्याय से पांचवें छठे अध्याय से कंटिन्यू सृष्टि का वर्णन, अलग अलग तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन, जो कि अलग अलग भौतिक तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन का हमने प्रसंग को सुना कि किस प्रकार से भगवान के विराट रूप से प्रकट होते अलग अलग तत्व। तो ये सारे सृष्टि की रचना या सृष्टि का उत्पत्ति या इन भौतिक तत्वों की उत्पत्ति होने के पश्चात अभी जो इस ये अध्याय जो प्रारंभ हुआ है उसमें विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रश्न से अध्याय का प्रारंभ हुआ है, इसलिए इस अध्याय का नाम भी है विदुर के द्वारा अन्य प्रश्न। तो विदुर जी प्रश्न करते हैं, जैसे कि हमने कल के श्लोक में देखा कि विदुर जी यह प्रश्न कर रहे हैं कि ओ भगवान जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, पूर्ण रूप से अविकारी है, पूर्ण रूप से शाश्वत है और वो प्रकृति के गुणों के अधीनस्थ नहीं होते हैं, ऐसे भगवान लेकिन जब आते यहाँ पे और अलग अलग लीलाएं करते हैं या अलग अलग कार्य करते हैं तो ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि वो प्रकृति के गुणों के अंतर्गत होके कार्य करते हैं। ये प्रश्न है कि वह भगवान जो कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, उनके ऊपर उनसे ही सारे चर अचर जो भी अभी सुनते आ रहे सृष्टि का वो सब उत्पन्न हुआ है सारे चीजें, लेकिन वह ये भी वर्णन हमने सुना कि वह उससे विरक्त रहते हैं, उसके अधीनस्थ नहीं होते, वो सारे तत्व सारे भौतिक तत्व उनके अधीनस्थ होते हैं, लेकिन भगवान उनके। लेकिन विदुर जी का यह प्रश्न है, क्योंकि ये सारा सृष्टि का वर्णन सुने, लेकिन अध्याय को ये जो प्रारंभ हुआ है विदुर के प्रश्न से, तो प्रश्न यह उठता है कि क्या विदुर को सृष्टि का इतना वर्णन सुनने के बाद भी क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ, कुछ और प्रश्न पूछ रहे हैं। तो विदुर जी प्रश्न एक्चुअली में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। एक्चुअली पहले मैं कुछ लोगों को पढ़ा था तो समझ में नहीं आया था एक्चुअली, लेकिन बहुत गहराई से जब पढ़ा, बहुत ध्यानपूर्वक प्रभुपाद जी के तात्पर्य ये सब कम से कम 10-12-15 बार पढ़ा था, थोड़ा कुछ समझ में आया और कि क्या विदुर जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो विदुर जी विशेषतः दो प्रश्नों को पूछते हैं, दो प्रश्न लगभग 7-8 श्लोकों तक ये दो प्रश्नों को पूछते हैं, उसके बाद मैत्रेय जी उत्तर प्रारंभ करते हैं। तो दो प्रश्न पूछते हैं विदुर जी, एक तो कि भगवान के बारे में और दूसरा जीवात्मा के बारे में, जीव और परमात्मा के बारे में और क्लेरिफिकेशन चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि विदुर जी को कुछ डाउट उत्पन्न हुआ, लेकिन और ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, और ज्ञान लोगों को देना चाहते हैं, क्योंकि ये जीव और परमात्मा के विषय में जो प्रश्न पूछे ना, एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। परमात्मा के विषय में प्रश्न करते हुए क्या करते हैं कि वह भगवान जो कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक तत्व है, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि वह गुणों के अधीनस्थ दिखते हैं, ऐसा कि वह गुणों के अधीन होकर कार्य करते हैं। वैसे ही ये जो जीवात्मा है वह भी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक तत्व है, लेकिन फिर भी भौतिक जीवों के भौतिक प्रकृति के जब संसर्ग में आता है तो बहुत सारे दुख को प्राप्त होता है। अगर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, शुद्ध है, तो दुख को नहीं प्राप्त करना चाहिए। ये दो प्रश्न विशेषतः विदुर जी पूछते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें जो आध्यात्मिक तत्व है, लेकिन देखने में जब भी भगवान लीला करते हैं या फिर ये जीवात्मा किस प्रकार से दुख भोग रहा है, इसको क्लियर करना चाहते हैं विदुर जी। जैसे कि भगवद्गीता में हम सुनते हैं ना कि भगवद्गीता में ये हमारे शरीर में 10 तत्व हैं, पंच महाभूत और 3 सूक्ष्म तत्व, मन बुद्धि अहंकार और आत्मा और परमात्मा, जो कि सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्व है ना। पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जो शरीर हमको दिख रहा है ये पंचभूत है, और दूसरा 5 और सूक्ष्म तत्व है, और वो 5 सूक्ष्म से भी 3 तत्व जो है भौतिक सूक्ष्म तत्व है और 2 तत्व जो है आध्यात्मिक सूक्ष्म तत्व है, ये आत्मा और परमात्मा। तो विदुर जी का जो अभी प्रश्न है कि ये जो सूक्ष्म आध्यात्मिक जो तत्व है जो पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, या इस भौतिक संसर्ग में रहता है तो कैसे हो, जीवात्मा है तो दुखी कैसे होता है अगर पूर्ण रूप से वह शुद्ध है, तो एक प्रश्न है। दूसरा है भगवान भी जब लीला करते हैं या भगवान भी कार्यकलाप करते हैं तो गुणों के अधीन होकर ही दिखते हैं, तो इसको थोड़ा और क्लियरिफिकेशन करिए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों से प्रारंभ करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने जब इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ा इस संदर्भ में जीव गोस्वामी के, तो और भी बहुत सारी चीजें मुझे प्राप्त हुई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीवात्मा और परमात्मा के विषय में और डिटेल जानना चाहते हैं विदुर जी, या लोगों को बताना चाहते हैं और ज्ञान को निकलवाना चाहते हैं मैत्री मुनि से, इसलिए इस अध्याय का प्रारंभ जो है वह प्रश्न से हुआ। तो भगवान के विषय में कि जो भगवान दिव्य है और भौतिक जगत से उनका कोई लेना देना नहीं है, वह बिल्कुल तीनों गुणों से परे है, वो सारे गुण उनके अधीनस्थ है, वो स्वीकार करते हैं लेकिन वो उनके अधीन नहीं होते हैं, ये गुण उनके अधीनस्थ है। तो अगर भगवान दिव्य है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और पूर्ण रूप से अधिकारी है, तो विदुर का यह प्रश्न है कि यह कैसे संभव है कि भगवान, यह दिखाई देता है कि भगवान गुणों के अधीनस्थ होकर कार्य करते हैं। मान लीजिए जैसे कि पिछले श्लोक में बताया गया, बताते हैं कि अगर ये कह सकते हम कि वह लीला करते हैं लेकिन फिर भी लीला करते हैं लेकिन दिखाई तो यही देता है कि वह गुणों के अधीनस्थ होकर कार्य करते हैं, तो इसको क्लेरिफिकेशन मांग रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है पूर्ण रूप से आत्मा राम है, पूर्ण रूप से अपने आप में संतुष्ट है, इसलिए इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं विदुर जी, जो कि आज के श्लोक में एक बालक का उदाहरण देते हैं आज के श्लोक में, कि कैसे एक बालक जो है उसको खेलने की बहुत खेलना है, जो एक बालक को तो उसको इच्छा प्रेरित करती है उसको खेलने के लिए, उसके अंदर जो इच्छा है वो प्रेरित करती है। ऐसे ही अगर भगवान लीला करते हैं तो उनके क्या अंदर जो इच्छा शक्ति उनको प्रेरित करती है जो कि दिखाई दे रहा है। ये बालक का उदाहरण देते हुए ये प्रश्न को क्लियर करते हैं कि बालक जैसे कि इच्छा करता है और अनेक अनेक क्रीड़ाओं को करता है, मतलब इच्छा शक्ति जो है उसको प्रेरित करती है, तो क्या भगवान के अंदर भी ऐसा इच्छा शक्ति जो कि उनको प्रेरित करती है? और अगर करती है तो वो भगवान जो कि अविनाशी है पूर्ण आध्यात्मिक, तो एक ऐसे संभव है? तो ये प्रश्न भगवान के विषय में वो पूछते हैं। हालांकि इसका उत्तर जो है आगे मैत्री मुनि देंगे, लेकिन हम केवल प्रश्न को ही क्लियर कर रहे हैं क्योंकि विषय वही है। तो भगवान जो है पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, षडैश्वर्य पूर्ण है, जैसे पराशर मुनि कहते हैं ना कि सारे ऐश्वर्य क्या रहे इसको ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य ज्ञान वैराग्यस्य, ये जो छह ऐश्वर्य है पूर्ण रूप से भगवान के अंदर है। पूर्ण रूप से बल है, पूर्ण रूप से यश है, पूर्ण रूप से धन भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, सौंदर्य भी है, पूर्ण रूप से सब कुछ पूर्ण रूप से है। और सब कुछ पूर्ण रूप से होने के नाते वो क्या है? आत्मा राम है, अपने आप में रमण करने वाले है। लेकिन फिर भी कैसा दिखते हैं कि उनको कोई इच्छा शक्ति, जैसे बालक का उदाहरण देते हैं कि वो इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री गौर निताय की, जय श्री राधा गोविंद जी की, जय। तो पूर्ण ये जो ऐश्वर्य भगवान के पास पूर्ण रूप से हर एक चीज पूर्ण रूप से है, तो पूर्ण रूप से होने के नाते वो आत्माराम है, अपने आप में रमण करने वाले हैं। तो लेकिन दिखाई कैसा देता है? गुणों के अधीनस्थ होकर दिखते हैं। तो ये कैसे संभव है? अगर ऐसा है तो फिर वही बालक का जिस प्रकार से उसको इच्छा शक्ति प्रेरित करता है, तो मतलब भगवान को भी करता है इच्छा शक्ति प्रेरित। तो ये प्रश्न है विदुर का आज के श्लोक में भगवान के विषय में। और आगे वो जीव के विषय में भी पूछते हैं कि वह जीव जो कि पूर्ण रूप से शुद्ध है, आध्यात्मिक है, तो सेम वैसा ही उसको कोई दुख नहीं होना चाहिए, कोई मोहित नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ये शरीर प्राप्त होता है, इस प्रकृति में आता है, वो पूर्ण रूप से मोह को प्राप्त हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है, पूर्ण रूप से मोहग्रस्त हो जाता है। ये कैसे संभव है? और प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में एक जगह लिखते हैं कि ये जो जीव है पूर्ण शुद्ध और आध्यात्मिक है, ये जो हमारी अवस्था है वो सारा स्वप्न की तुलना करते हैं प्रभुपाद जी कि हम स्वप्न देख रहे हैं। ये शरीर भी मिला, जैसे हम रात को स्वप्न देखते हैं ना, सुबह वो सब वो मिथ्या हो जाता है ना, अरे झूठा ही था सब ये। ऐसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव जो है पूर्ण शुद्ध तत्व है, आध्यात्मिक है, और जितनी भी सारी चीजें ये सब दिख रहा है मोहग्रस्त को प्राप्त, ये सब स्वप्न अवस्था है उसकी, स्वप्न के समान है। तो इसके अनुसार विदुर का जो प्रश्न है वो प्रश्न यह है कि फिर कैसे जो जीव है वो फंस गया इस संसार में? अगर पूर्ण चेतना पूर्ण शुद्ध है वो, तो इस संसार में कैसे फंस गया? लेकिन चलो फंस तो फंस गया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो दुख को प्राप्त कर रहा है, और वो दुख को तब प्राप्त कर रहा है जब भगवान उसके पास में बैठे हुए है। भगवान उसके पास में बैठे हुए, उसके सबसे नजदीक, सबसे नजदीक कौन है? भगवान ही हमारे हृदय में बैठे हुए, एकदम नजदीक जीवात्मा के कौन है? तो उस भगवान की उपस्थिति में भी जीवात्मा दुख को भोगता है। एकदम नजदीक भगवान बैठे हुए, उसके बाद भी वो जीवात्मा दुख को भोगता है, ये कैसे संभव? ये विदुर का प्रश्न है जीवात्मा को भी लेकर। ये दो प्रश्नों को विदुर जी पूछते हैं कि कैसे ये संभव है कि जो कि पूर्ण आध्यात्मिक तत्व, ये दोनों आत्मा परमात्मा है, फिर भी ये क्यों दिखता है कि संसार में वो गुणों के अधीनस्थ होके या प्रकृति के अनुसार उनके चलायमान है सारे चीज, ये दोनों कार्य करते हैं, इसको क्लेरिफिकेशन करिए। तो ये प्रश्न है केवल, आज उत्तर हम बाद में सुनेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम थोड़ा देखते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि भगवान जो है कि पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो कि अद्वय है, अविकारी है, शाश्वत है, और उनके अलावा किसी भी वस्तु का अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। वो है इसलिए वस्तु का, जो भी संसार में दिख रहा है उसका अस्तित्व हम देख पा रहे हैं, उनके अलावा किसी भी वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं। रूपा जी इस बात को तात्पर्य में बताते हैं और उदाहरण देते हैं कि जैसे अग्नि प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, प्रकाश है मतलब अग्नि है तभी प्रकाश है, अग्नि के बिना प्रकाश नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान है, इसलिए सारे संसार में जितने भी 84 लाख युनिया हो या चर अचर जो भी चीज हो, वो सब भगवान का, भगवान है, उनका अस्तित्व है, इसलिए सब दिख रहा है। ये उदाहरण प्रभुपाद जी अग्नि का देते हैं कि अग्नि है तभी प्रकाश है, केवल प्रकाश की अस्तित्व अलग से नहीं हो सकता है। और हम यह भी देखें, जैसे पिछले अध्याय में हम श्रवण करते आए हैं, अंतिम में पिछले अध्यायों के अंतिम में ब्रह्मा जी कुछ कंक्लूजन देते हैं। हमने सुना कि किस प्रकार से, हमने देखा कि ब्रह्मा जी जैसे कि शरीर में 10 तत्व ना, 5 महाभूत और 5 सूक्ष्म तत्व, तो ब्रह्मा जी ने 5 महाभूत बना दिया, भगवान के आदेशानुसार 5 महाभूत भी बना दिया, सारा चीजें तत्व लेकर जो भी है कंस्ट्रक्शन कर दिया, और उसके बाद ये जो मन बुद्धि अहंकार को भी बैठा दिया, और भगवान से लेकर उन जीवों को भी अलग अलग जगह पे फिट कर दिया, लेकिन फिर भी ये 9 तत्व आने के बाद भी चलायमान नहीं हुई, चला नहीं जीव को, कोई भी वस्तु चलायमान नहीं हुई, सृष्टि चलायमान हुई नहीं। 9 तत्वों को फिट करने के बाद भी ब्रह्मा जी भगवान के पास गए कि चल ही नहीं रहे, आपने सब कुछ ले लेके मैंने फिट कर डाला, कंस्ट्रक्शन कर डाला, लेकिन कुछ ये तो चलायमान ही नहीं है। तो मानो भगवान मुस्कुराते हैं, चलायमान कैसे होगी, मैं ही नहीं हूं वहां पर तो कैसे चलायमान होगा। तब भगवान 10वें तत्व के रूप में, परमात्मा के रूप में हर एक जीव के हृदय में आकर वास किए, तब जाके चलायमान हुई प्रकृति, जो भी है जीव चला ऐसे काम करने लगा। तो जब तक भगवान की उपस्थिति नहीं है तब तक इस जीव का अस्तित्व तो है ही नहीं बिल्कुल। जैसे कि भगवद्गीता कोर्स में भी एग्जाम्पल सब लोग देते हैं कि जैसे कि कंप्यूटर का उदाहरण देते हैं कि बहुत सुंदर सा कंप्यूटर है, खरीद के लाए, बहुत देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन कंप्यूटर में 2 पार्ट होता है, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, है ना, 2 पार्ट होता है कंप्यूटर का। हार्डवेयर जो दिखता है ये दिख रहा है, और सॉफ्टवेयर जो कि दिखता नहीं है। तो हार्डवेयर की तुलना किससे किया गया, इस शरीर से किया गया है, ये जो 5 महाभूत है इससे शरीर के, इस शरीर से हार्डवेयर की तुलना किया गया जो कि बाहर से दिख रहा है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो दिखता नहीं है। जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वो दिखता नहीं है लेकिन बड़ा काम करता है, क्योंकि उसके बिना वो चलेगा ही नहीं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है मन बुद्धि अहंकार जो कि सूक्ष्म तत्व अंदर है लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन काम बहुत बड़ा करता है कि नहीं। तो इस प्रकार बहुत सुंदर हार्डवेयर भी है कंप्यूटर का और अंदर सॉफ्टवेयर भी, दोनों चीजें हैं तभी कंप्यूटर चलता है, लेकिन ये दोनों है बट पावर ही नहीं है। तो दोनों है लेकिन पावर नहीं है तो बेकार, वो पड़ा ही रहेगा, कितना भी सुंदर है कि वो 100 पीस के लिए दिखता रहेगा, लेकिन पावर ही नहीं है तो नहीं चलेगा। और ये पावर क्या है, जो आत्मा है वो प्लग पॉइंट के समान है, ये प्लग है ना, जहां से हम प्लग को डाल के चलायमान करते हैं वस्तु को, चल रहा है प्लग लगाते हैं, वो प्लग पॉइंट है जो आत्मा है, और परमात्मा जो है वो पावर हाउस है जहां से बिजली सब आ रहा है। अगर परमात्मा से वो सप्लाई वो बिजली का ना हो, पावर हाउस से नहीं आए इधर, तो प्लग पॉइंट में कितना भी स्क्रू ड्राइवर डालो और क्यों चल नहीं रहा है, सब तोड़ डालो फिर भी वो चलने वाला नहीं है। चलायमान तभी है जब परमात्मा है, वो वहां से बिजली का सप्लाई हो रहा है, वो सुपर सोल है ना, वहां से बिजली आ रहा है तब कुछ सब चला है। इसलिए तो कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि किस प्रकार कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, भगवान जो कि अविनाशी अद्वय है और उनके अलावा अगर वो है तभी संसार का अस्तित्व है, किसी भी जीव का अस्तित्व है, उनके बिना अलग अस्तित्व हो ही नहीं सकता है जीव का या इस संसार या प्रकृति का। ये बात प्रभुपाद जी तात्पर्य के प्रथम पैराग्राफ में कहते हैं, और साथ साथ में प्रभुपाद जी अंत में यह कहते हैं कि विराट रूप की पूर्ण अभिव्यक्ति, जो कि हमने विराट रूप का जो सृष्टि की रचना करते हुए विराट रूप का ये किया, हमने देखा कि किस प्रकार से विराट रूप से भगवान सृष्टि करते हैं। तो इस रूप को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह भगवान के निर्गुण शक्ति का विस्तार है। भगवान का जो निर्गुण शक्ति है ना, एक सगुण शक्ति दूसरा निर्गुण, तो जो निर्गुण शक्ति है, निर्गुण शक्ति का जो रूप का विस्तार है, ये जो विराट पुरुष निर्गुण शक्ति का, अर्थात सगुण सगुण भी है, मतलब भगवान अपने धाम में रहते हैं गोलोक वृंदावन धाम में, वो वहां पे रहते हैं, लेकिन उनके सारे चीजें जो कुछ भी हम देख रहे हैं सृष्टि की रचना, ये सारे चीजें वो सब भगवान का निर्गुण रूप का विस्तार है, उनकी शक्तियों का विस्तार है, भगवान तो केवल आनंद, पूर्ण रूप से सच्चिदानंद आनंदमय है और अपने धाम गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, जिसका वर्णन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं लक्षावृतेषु सुरभिर् अभिपालयन्तम्। भगवान तो हमेशा गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं और वहां पे लक्षावृतेषु सुरभिः, हजारों हजारों लाखों लाखों सुरभि गाय के साथ में उनकी सेवा करते हैं और उनके साथ में रहते हैं भगवान। और जितना भी सृष्टि, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति सृष्टि रचना है, सारे चीज भगवान की शक्ति योग के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी अंत में तात्पर्य के कहते हैं, वो भगवद्गीता का एक श्लोक कोट करते हैं कि लक्षावृतेषु सुरभिर् मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अस्तिता। प्रभुपाद जी भगवद्गीता का श्लोक कोट करते हैं, इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि सारे जीव जो है मेरे अंदर है, मस्थानी सर्वभूतानी, सारे जीव किसके अंदर है, मेरे अंदर है। और उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, न चाहम ते सुवसिता, सारे जीव मेरे अंदर है लेकिन मैं उनके अंदर नहीं हूं। भगवान बोलते हैं कि सारे जीव मेरे अंदर है लेकिन मैं उनके अंदर नहीं हूं। अभी अभी मैंने क्या बताया, परमात्मा ने तो चलायमान नहीं है, तो परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हैं, भगवान स्वयं के यहां क्या कर रहे हैं कि सारे जीव मेरे अंदर है, मस्तानी सर्वभूतानी, लेकिन मैं उसके उनके अंदर नहीं हूं। लेकिन अभी हमने देखा कि बिना परमात्मा के कुछ कार्य ही नहीं होता है, बिना भगवान के इच्छा अनुसार कुछ कार्य ही नहीं होता है। तो एक कैसे भगवान यहां पर बोल रहे हैं कि मैं उनके अंदर नहीं हूं, एक कैसे है, क्योंकि परमात्मा रूप में सब जीव सब जगह पे है भगवान, और यहां पर बोल रहे हैं मैं नहीं हूं। न चाहम ते सुवस्थिता, तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसको समझाते हुए कि यह है भगवान का ऐश्वर्य, यह भगवान का ऐश्वर्य है। कौन सा ऐश्वर्य है, कैसा ऐश्वर्य है, आसक्ति और विरक्ति का ऐश्वर्य है, कि वो आसक्त भी है और विरक्त भी है। ये आसक्ति और विरक्ति का ऐश्वर्य है, वे पूर्ण रूप से आसक्त भी है और पूर्ण रूप से विरक्त है। जैसे भी ना, पूर्ण रूप से वैराग्य भी है, पूर्ण रूप से सौंदर्य भी है, जो भी पराशर मुनि ने वर्णन किया भगवान का, उसी चीज को प्रभुपाद जी यहां पे कहते हैं कि वह यह भगवान का ऐश्वर्य है, रहते हुए भी नहीं है। तो वे पूर्ण रूप से आसक्त भी है और पूर्ण रूप से विरक्त भी है, यह भगवान का ऐश्वर्य है। इसे कहते हैं अचिंत भेदाभेद तत्व, यही अचिंत भेदाभेद तत्व है, अचिंत भेदाभेद तत्व। भगवान है भी नहीं भी है, तो ये अचिंत भेदाभेद। थोड़ा आइए हम इस अचिंत भेदाभेद के ऊपर थोड़ा से, जो कि मैंने कुछ कलेक्शन किया हूं, थोड़ा से उसको 10-15 मिनट के अंतराल में हम जानते हैं कि अचिंत भेदाभेद तत्व क्या, क्योंकि यही चीज आज प्रभुपाद जी यहां पे कंक्लूजन देते हैं कि भगवान अंत में लिखते हैं ना, वे हर वस्तु के प्रति आसक्त है फिर भी वो सबों से विरक्त है। इसको कैसे समझा जाए, यही अचिंत भेदाभेद तत्व यही है। तो ये आत्मा और परमात्मा के विषय में बहुत सारे कंफ्यूजन है संसार में, वो एक है एक नहीं है क्या है, सारे चीजें बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो इस आत्मा और परमात्मा को के विषय में थोड़ा से हम अंतर को जानते हुए, इस अंतर को अनेक आचार्यों ने बहुत बहुत जगह पे वर्णन है कि अनेक आचार्यों ने इसको प्रस्तुत किया किस प्रकार से आत्मा और परमात्मा के विषय में क्या अंतर है। तो जैसे कि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग सिद्धांत की रचना की, जैसे कि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद सिद्धांत की रचना किया शंकराचार्य ने, और उसके बाद रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की रचना किया, इस जीव और आत्मा के स्थिति को अंतर को समझाने के लिए, क्या रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का, और उसके बाद मध्वाचार्य ने द्वैत सिद्धांत की रचना किया, और उसके बाद निम्बार्काचार्य ने द्वैत सिद्धांत की रचना किया, और विष्णु स्वामी ने शुद्धाद्वैत सिद्धांत की रचना किया। केवल जीव और परमात्मा के इस भेद को, जो विदुर का प्रश्न है ना जीव और परमात्मा के विषय में, क्लियर करिए, और तो इस भेद को समझाने, इस अंतर को समझाने के लिए इन आचार्यों ने ये अलग अलग बातें को लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं कि जैसे कि अद्वैतवाद सिद्धांत, जो कि शंकराचार्य ने लिखा इस सिद्धांत को, और वो क्या कहते हैं कि जीव और परमात्मा एक है, भगवान और जीवात्मा दोनों एक है, जो कि मायावाद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ते ही रहते हैं, और प्रभुपाद जी अपने हर तात्पर्य में इस मायावाद सिद्धांत के खंडन करते ही करते हैं माया, क्योंकि कभी जीव और परमात्मा एक हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन शंकराचार्य ने लिखा कि जीव और परमात्मा एक है, जिसको अद्वैतवाद सिद्धांत कहते हैं, ये शंकराचार्य ने लिखा। और उसके बाद इस शंकराचार्य को सिद्धांत को खंडन करते हुए रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की रचना किया। शंकराचार्य का जो सिद्धांत क्या है कि भगवान और आत्मा, आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, भगवान और जीवात्मा दोनों एक है, इस सिद्धांत को खंडन करने के लिए रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की रचना किया। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत मतलब उन्होंने कहा कि ये दो है, एक नहीं है, दो है। विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट मतलब विशेष रूप से, ये दो है, दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। और किस रूप में अलग है, जैसे कि आत्मा बद्ध होता है और परमात्मा कभी बद्ध नहीं होते, इस रूप में अलग अलग है। आत्मा कभी बद्ध नहीं होता है और परमात्मा, आत्मा का, आत्मा बद्ध होता है परमात्मा कभी बद्ध नहीं होते हैं। आत्मा पूरे शरीर का देखभाल करता है और परमात्मा जो है कि पूरे जगत की देखभाल करते हैं। ये अंतर बताया रामानुजाचार्य ने अपने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में। रामानुजाचार्य ने इस बात को बताया कि ये अंतर है, जीव और परमात्मा एक नहीं है। शंकराचार्य के सिद्धांत को खंडन किया और खंडन करते हुए बताया कि एक नहीं है, विशेष है, विशेष रूप से जो जीवात्मा है वो इस शरीर की देखभाल करता है, परमात्मा पूरे जगत की देखभाल करते हैं, दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। ये सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, जिसका रचना रामानुजाचार्य ने किया। लेकिन फिर भी क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ, तो आगे एक आचार्य आए जिनका नाम है मध्वाचार्य। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद सिद्धांत की रचना किया कि दो है, आत्मा और परमात्मा दोनों अलग है। जो इस बात को स्वीकार करता है कि आत्मा और परमात्मा अलग है, भगवान और जीवात्मा कभी एक नहीं हो सकते हैं, जो भगवान को मानता है, जो स्वीकार करता है कि ये दोनों अलग है, वही भगवत धाम जा सकता है, अन्यथा नहीं जा सकता है। तो ये जो द्वैतवाद सिद्धांत है मध्वाचार्य ने लिखा, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से नहीं हुआ। आगे एक आचार्य आए जिन्होंने द्वैताद्वैत सिद्धांत की रचना किया, निम्बार्काचार्य, जिन्होंने यह अंतर बताया कि अंतर है, दोनों अलग अलग है, दोनों जीवात्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है, द्वैता द्वैत दोनों अलग अलग है। लेकिन किस प्रकार से अलग है, जैसे कि समुद्र और समुद्र का लहर, वो एग्जांपल देते हैं। समुद्र और समुद्र का लहर दोनों अलग भी है और एक भी है ना। समुद्र है तो समुद्र का लहर है, समुद्र का लहर का केवल अपना अलग अस्तित्व नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि समुद्र नहीं है तो लहर चल रहा है, ऐसा नहीं है। समुद्र है इसलिए समुद्र का लहर है, तो दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, इस बात की स्थापना किया द्वैताद्वैत सिद्धांत में निम्बार्काचार्य ने। अभी आगे जो पांचवा सिद्धांत है वो शुद्धाद्वैत सिद्धांत है। ये शुद्धाद्वैत सिद्धांत को विष्णु स्वामी ने इस सिद्धांत की रचना किया। वो यह कहते हैं कि देखो, आत्मा और परमात्मा दोनों एक तो है नहीं, दोनों अलग अलग ही है। लेकिन कैसा अलग है, तो कहते शुद्धाद्वैत, वो शुद्ध है दोनों, शुद्धाद्वैत दो है, दोनों अलग अलग है, लेकिन कैसे है शुद्ध है, दोनों शुद्ध है। जैसे पूर्ण आध्यात्मिक तत्व है ना, इसी बात का जो भी मैंने वर्णन किया, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक तत्व है दोनों, ये पूर्ण रूप से शुद्ध है, इस बात का वर्णन विष्णु स्वामी ने शुद्धाद्वैत सिद्धांत के अंतर्गत किया। लेकिन शंकराचार्य का जो सिद्धांत था अद्वैतवाद, जो कि एक है, उसको खंडन करने के लिए इन अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग सिद्धांतों की रचना किया। रामानुजाचार्य आए, सिद्धांत की रचना किया, उसके बाद मध्वाचार्य आए, और उसके बाद विष्णु स्वामी आए, निम्बार्काचार्य, अलग अलग सिद्धांतों की रचना किया। केवल एकमात्र शंकराचार्य के जो सिद्धांत था अद्वैतवाद, उसको खंडन करने के लिए, क्योंकि बाकी सारे आचार्य अलग अलग बताए, लेकिन उसको खंडन करने के लिए ये बाकी सब आचार्यों ने अपने सिद्धांत को दिया। लेकिन फिर भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये आत्मा जीव और परमात्मा के बीच में अंतर क्या है, जो कि विदुर प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए विदुर स्पष्ट करना चाह रहे हैं। देखिए, इतने बड़े बड़े आचार्य, कोई साधारण आचार्य नहीं, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य कोई साधारण आचार्य नहीं है, इसलिए विदुर जी यहाँ पे इस प्रश्न को और क्लियरिफिकेशन करना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा के अंतर के विषय में। तो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया, इसलिए जब भगवान ने यह देखा कि जीव और आत्मा के विषय में जो ये जो सिद्धांत है या जो भी संबंध है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया, तो स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए स्वयं भगवान जब इस सिद्धांत को ये जीव और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है, इस सिद्धांत को पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने एक सिद्धांत की रचना किया जिसका नाम है अचिंत भेदाभेद, जिसकी वर्णन प्रभुपाद जी अंतिम पैराग्राफ में करते हैं। अचिंत भेदाभेद तत्व को, उस सिद्धांत को रचना श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। अभी अचिंत भेदाभेद तत्व क्या है कि अचिंत भेदाभेद, भेद मतलब अंतर, अभेद मतलब अंतर नहीं है, भेद मतलब अंतर, अभेद मतलब अंतर नहीं है, तो अंतर है भी नहीं भी है, अंतर है भी नहीं है, लेकिन ये पिछले आचार्यों ने एक कंक्लूजन दिया हुआ है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, किसी को खंडन नहीं किया, सबको लेकर एक सार का प्रस्तुत किया, सबकी सभी के सिद्धांतों को लिया लेकिन एक सार के रूप में हमको प्रस्तुत किया, किसी का खंडन नहीं किया, प्रस्तुत करके एक अलग सिद्धांत बनाया जिसको अचिंत भेदाभेद सिद्धांत कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने भेद है भी और भेद नहीं है, किस प्रकार का भेद है, अंतर किस प्रकार का है और किस प्रकार का अंतर नहीं है, अभेद किस प्रकार का है, भेद मतलब अंतर, अभेद मतलब अंतर नहीं है, तो किस प्रकार का अंतर है और किस प्रकार का अंतर नहीं है, इसको हम समझ नहीं सकते, इसलिए क्या कहते हैं अचिंत। ये दोनों को नहीं समझ सकते हम, किस प्रकार का अंतर है, किस प्रकार का भेद है और किस प्रकार का नहीं है, ये नहीं समझ सकते, इसलिए शब्द देते हैं अचिंत शब्द, अचिंत भेदाभेद। जैसे कि ब्रह्मा जी पिछले अध्याय में हमने देखा कि हजारों साल तक दैवी विभूति तपस्या करने के बाद भी वो किस कंक्लूजन क्या दिए कि भगवान के विषय में पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता क्योंकि वो अचिंत है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसी भागवत को उन्होंने प्रस्तुत किया, प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए हम कहते हैं, हम ये स्तुति करते हैं ना, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधुम वर्गेनया कल्पितम श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमापुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदं तत्रादरो न परम। श्री चैतन्य महाप्रभु का यह सिद्धांत अचिंत भेद सिद्धांत उनका मत है, श्रीमद् भागवत प्रमाण अमलम, उससे लेकर वो इस सिद्धांत की रचना किया श्री चैतन्य महाप्रभु में, जिस सिद्धांत का नाम है अचिंत भेदाभेद तत्व सिद्धांत, इसकी रचना श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया कि जे इसको समझ नहीं सकते हम, ये अचिंत है पूर्ण रूप से, क्योंकि भगवान के विषय में जो ब्रह्मा जी ने कंक्लूजन दिया ना कि लीलाओं को नहीं समझ सकते वो अचिंत है, तो ये दोनों तत्व जो है पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के नाते और दोनों पूर्ण सच्चिदानंद विग्रह है, पूर्ण रूप से आनंदमय है, ये दोनों आध्यात्मिक होने के नाते हम इसको कभी भी समझ नहीं सकते हैं, इसलिए अचिंत भेदाभेद है, इसलिए अचिंत भेदाभेद। इसलिए इस श्लोक में जो भगवान कहते हैं, जो प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि मस्तानि सर्वभूतानि, सारे जीव मेरे अंदर है कि मैं उसमें नहीं हूं, ये अचिंत भेदाभेद तत्व है जिसकी रचना श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया कि हम नहीं समझ सकते हैं। और इसी ये जो श्लोक प्रभुपाद जी ने कोट किया यहाँ पे तात्पर्य में, इसको अगर हम आप भगवद गीता में जब देखेंगे तब उसके ऊपर तात्पर्य जब प्रभुपाद जी लिखते हैं तब तात्पर्य का शुरुआत प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सुंदर से करते हैं, समझाने का प्रयास नहीं करते, भक्ति रसामृत सुंदर से करते हैं, वहां पे एक श्लोक कोट करते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि कि अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ और तभी जाके भगवान को कुछ रूप में समझ सकते हो, क्योंकि अचिंत भेदाभेद इस श्लोक के ऊपर जो भगवान ने बता रहे हैं वहां पे प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु का उदाहरण देते हुए अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ और पूरा उसके ऊपर तात्पर्य लिखे हुए प्रभुपाद जी, और इसको समझाने नहीं गए क्योंकि वो कंक्लूजन दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जब अपना मति फोड़ लिया हजार देवी युगों तक, तो हम क्या अभी मति फोड़े, अपना बुद्धिमत्ता इसी में है कि उसको स्वीकार करके और ये वर्णन है जो हुआ था ना पिछले अध्याय के अंतिम में, कि बुद्धिमान वही होता है जो भगवान के नाम का, गुणों का कीर्तन, यश का गायन कीर्तन करते हुए और इस संसार इससे जगत से मुक्त हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने यही बताया इस श्लोक जो कोट किए है कि वहां पे कि अपने इंद्रियों को भगवान ऋषिकेश के उनकी सेवा में लगाओ और तब जाके हम कुछ रूप में भगवान को समझ सकते हैं, अन्यथा ये अचिंत वेदा वेद है, अचिंत है भगवान और एक आत्मा परमात्मा या अचिंत तत्व है, इसको हम पूर्णतः समझ नहीं सकते। इसी चीज को विदुर जी आज मैत्रेय मुनि से प्रश्न के रूप में पूछते हैं। आज से प्रारंभ हुआ है, आज परमात्मा के भगवान के विषय में प्रश्न किए हैं, आगे वो जीवात्मा के विषय में भी प्रश्न करेंगे। तो ये प्रश्न है आज का जो श्लोक और आज का श्लोक। हरे कृष्ण। ग्रंथा श्रीमद्भागवतम की जय, भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। नौवा जीवात्मा जो कि भगवान ने दिया ना, नहीं नहीं भगवान ने जो नहीं कहा से उत्पत्ति हुआ उसको लिया और वह किया, नहीं नहीं बनाया नहीं, वो आदेश हुआ था तो उन्हीं तत्वों को लेकर ब्रह्मा जी ने विसर्ग का किया, तो पांच तो उधर से लेके किया, तैयार किया, सब खड़ा कर दिया, लेकिन चलायमान नहीं हुआ तो उनको टेंशन हुआ चलायमान क्यों नहीं हुआ ऐसा।